एकत्र फाउंडेशन प्रस्तुत करता है ज्ञान गोष्ठी, दुनिया के बेहतरीन विचारों और विचारकों का सार अब हमारी भाषा में। ये ऑडियो सारांश एकत्र एआई की मदद से तैयार किया गया है।
आज ज्ञान गोष्ठी में हम इटली के एक ऐसे अनोखे लेखक की दुनिया में गोता लगा रहे हैं जिनकी कहानियां दिमागी कसरत भी हैं और कल्पना के बिल्कुल नई उड़ान भी।
हाँ, एक ऐसा जादूगर जिसने विज्ञान, लोक कथा, यहाँ तक कि गणित और दर्शन सबको अपनी कहानियों में ऐसे घोला
कि पता ही नहीं चलता कहाँ क्या है।
हम बात कर रहे हैं इतालो कैल्विनो की।
और ये समझना दिलचस्प है ना कि कैल्विनो सिर्फ कहानियां नहीं सुना रहे थे, वो तो कहानी कहने के जो तरीके हैं उन्हीं से खेल रहे थे।
सही कहा, वो हमें सोचने पर मजबूर करते हैं कि हम दुनिया को कैसे देखते हैं, कैसे समझते हैं और फिर उसे शब्दों में कैसे बयां करते हैं।
बिल्कुल। और उनका जन्म भी देखे कितना अलग, 1923 में क्यूबा में, सांतियागो दे लास वेगास में, जबकि पहचान बनी एक इतालवी लेखक की। और फिर 1985 में इटली के सेना में उनका निधन हुआ। मतलब जैसे जन्म से ही पूरी दुनिया घूमने और अलग अलग विचारों को समेटने का इशारा मिल गया था।
हाँ, कह सकते हैं। तो आज की हमारी ये जो बातचीत है, ये कैल्विनो के इसी अनोखेपन को समझने की कोशिश है
कि कैसे उन्होंने कल्पना और बनावट, मतलब स्ट्रक्चर का इस्तेमाल करके अपने समय की जो उथल पुथल भरी दुनिया थी उसे समझने और दिखाने का एक नया रास्ता खोजा।
हाँ, चलिए शुरुआत करते हैं उनके समय और माहौल से, वो जानना बहुत जरूरी है।
बिल्कुल। 20वीं सदी का इटली, वो तो बहुत ही मुश्किल दौर रहा होगा।
बहुत ज्यादा। फासीवाद का उभार, फिर उसका खत्म होना, दूसरा विश्व युद्ध, उसके बाद की तबाही। सोचिए, इन सब ने इटली के समाज पर, वहां की सोच पर कितना गहरा असर डाला होगा।
और उसी दौर में इटली में नव यथार्थवाद यानी न्यू रियलिज्म का जोर था, है ना। सिजारे पवे से एलियो वित्तुरिनी जैसे बड़े लेखक थे।
हाँ, और वो युद्ध और गरीबी की जो कड़वी सच्चाई थी उसे बिल्कुल सीधे सीधे लिख रहे थे। कैल्विनो ने भी एनआउडी पब्लिशिंग हाउस में काम करते हुए इन लोगों से बहुत कुछ सीखा।
लेकिन ऐसा लगता है वो सिर्फ हकीकत दिखाने से संतुष्ट नहीं थे, कुछ और करना चाहते थे।
सही पकड़ा, कैल्विनो जल्दी ही उस नव यथार्थवाद के दायरे से आगे निकल गए। उन्हें लगा कि भाई, सिर्फ जो दिख रहा है उसे बता देना काफी नहीं है, दुनिया इससे कहीं ज्यादा पेचीदा है, कहीं ज्यादा उलझी हुई है।
अच्छा, तो यहीं पर शायद वो अंतर्राष्ट्रीय असर दिखने लगते हैं। आपने बोर्खेस का जिक्र किया था।
हाँ, बोर्खेस की कहानियों का जादू, नाबोकोव की भाषा का खेल, और खासकर पेरिस का एक ग्रुप था उलिपो, उसका बहुत असर पड़ा।
उलिपो, ये नाम थोड़ा अजीब है, क्या था ये ग्रुप?
उलिपो मतलब संभावित साहित्य की कार्यशाला, वह द लिटरा चूह पुतोसियल। इसमें रेमन केनो, जॉर्जेस पेरेक जैसे लेखक भी थे और गणितज्ञ भी।
लेखक और गणितज्ञ साथ में।
हाँ, यही तो मजेदार बात थी। उनका आइडिया था कि लिखने के लिए खुद पर कुछ नियम या पाबंदियां लगाई जाए, कंस्ट्रेंट्स जिसे कहते हैं।
नियम लिखने के लिए जैसे?
जैसे मान लीजिए कोई कहानी लिखनी है बिना ई अक्षर का इस्तेमाल किए, या हर वाक्य एक खास गणितीय नियम से बनाना है। सोचिए, ये तो लिखने को एक खेल या पहेली बनाने जैसा हो गया।
ये तो मतलब उल्टा लगता है। हम तो सोचते हैं लिखने के लिए पूरी आजादी चाहिए, नियम तो बांटते हैं।
हाँ, आमतौर पर यही लगता है, पर कैल्विनो को यही बात जच गई। उन्हें लगा कि ये नियम या बाधाएं असल में कल्पना को रोकती नहीं, बल्कि उसे उकसाती हैं, उसे नए रास्ते खोजने पर मजबूर करती हैं।
अच्छा, दिलचस्प है ये तो।
यहीं से उनकी दिलचस्पी बढ़ी, शब्दों और कहानियों की बनावट में, मतलब स्ट्रक्चरलिज्म में, चीजों के मतलब कैसे बनते हैं यानी सेमियोटिक्स में, और कहानी कहने के गणितीय तरीकों में।
अच्छा, तो मतलब उनके लेखन में हमें वो युद्ध के बाद की इटली की चिंताएं भी दिखती हैं और माता पिता से मिली वो वैज्ञानिक से सोच भी, और साथ में ये उलिपो वाला भाषा और बनावट का खेल भी।
बिल्कुल, ये सब मिलकर कैल्विनो को कैल्विनो बनाते हैं। अब जरा उनके जीवन के सफर को देखें ना, तो ये संगम और साफ नजर आता है।
हाँ, क्यूबा में जन्म पर बचपन इटली में बीता, सैन रेमो में, समुन्दर किनारे।
और घर का माहौल देखिए, माता पिता दोनों वैज्ञानिक, पिता मारियो खेती के वैज्ञानिक, माँ एवा वनस्पति शास्त्री। तो घर में तर्क और विज्ञान पर जोर था, और फासीवाद के सख्त खिलाफ थे दोनों।
तो ये जो वैज्ञानिक माहौल था, इसका असर उनकी कहानियों में कैसे दिखता है? उनकी कहानियां तो अक्सर बहुत काल्पनिक, जादुई सी लगती हैं।
यही तो कमाल है, उनके माता पिता की जो वैज्ञानिक सोच थी ना, उसने उनकी कल्पना को एक ढांचा दिया, एक तरह का अंदरूनी लॉजिक। उनकी सबसे फैंटास्टिकल कहानियों में भी एक बनावट, एक व्यवस्था नजर आती है, जैसे प्रकृति के नियम होते हैं ना, वैसे।
अच्छा,
शुरुआत में तो करिमायते कहने पर उन्होंने ट्यूरिन यूनिवर्सिटी में कृषि विज्ञान पढ़ना भी शुरू किया था।
लेकिन फिर दूसरा विश्व युद्ध आ गया और सब बदल गया। कहते हैं वो फासीवादी सेना में भर्ती होने से बचने के लिए छिप गए थे।
हाँ, और फिर वो इतालवी प्रतिरोध आंदोलन मतलब रेजिस्टेंस में शामिल हो गए, गैरिबाल्डी ब्रिगेड का हिस्सा बने। और उनका गुप्त नाम जानते हैं क्या था?
क्या?
सैंटियागो, उनके जन्मस्थान क्यूबा की याद दिलाता हुआ।
वाह,
ये अनुभव उनके लिए बहुत गहरा था, बहुत ट्रांसफॉर्मेटिव। इसने उन्हें पूरी तरह साहित्य की तरफ मोड़ दिया।
और युद्ध के बाद फिर उन्होंने साहित्य की पढ़ाई की?
हाँ, युद्ध के बाद उन्होंने साहित्य की पढ़ाई पूरी की। कुछ समय कम्युनिस्ट पार्टी से भी जुड़े रहे, लेकिन 1956 में जब सोवियत संघ ने हंगरी पर हमला किया तो उनका मोह भंग हो गया और उन्होंने पार्टी छोड़ दी।
ये उनकी आजाद सोच दिखाता है।
बिल्कुल, उनका पहला उपन्यास द पाथ टू द स्पाइडर्स नेस्ट्स, इल सेंटियरो दे नीदी दिरागियो, इसी प्रतिरोध के अनुभव पर था। और फिर वो एनओडी पब्लिशिंग हाउस से जुड़ गए, जो उनके लिए सिर्फ नौकरी नहीं थी, एक तरह का बौद्धिक घर बन गया।
और फिर वो पेरिस गए, वो उनके लिए एक बड़ा मोड़ साबित हुआ होगा, है ना? खासकर उलीपों के संपर्क में आने के बाद।
हाँ बिल्कुल, 1967 में वो पेरिस चले गए, वहीं उलीपों से जुड़े और उनके लेखन में वो प्रयोगों का दौर शुरू हुआ, जो बहुत अहम है। वैसे 1964 में उन्होंने अर्जेंटीना की अनुवादक एस्टेर चिचिटा सिंगर से शादी की थी।
अच्छा।
पेरिस के बाद 1980 में वो रोम लौटे और फिर 1985 में जब वो हार्वर्ड यूनिवर्सिटी के लिए अपने मशहूर चार्ल्स एलियट नॉर्टन लेक्चर्स तैयार कर रहे थे, सियना में ब्रेन हेमरेज से अचानक उनका निधन हो गया। वही लेक्चर्स जो बाद में सिक्स मेमोज फॉर द नेक्स्ट मिलेनियम नाम से छपे, मैंने सुना है वो आज भी बहुत अहम माने जाते हैं, बहुत ज़्यादा। वो अधूरे लेक्चर्स आज भी लेखकों और सोचने वालों के लिए क्या कहते हैं, एक तरह से गाइड की तरह हैं। उनमें कैल्विनो ने उन गुणों की बात की है जो उनके हिसाब से आने वाले साहित्य के लिए जरूरी होंगे।
क्या थे वो गुण?
उन्होंने पांच बताए थे, हल्कापन, तेजी, सटीकता, दृश्यता और बहुलता। छठा वो लिख नहीं पाए थे।
हल्कापन, तेजी, सटीकता, दृश्यता, बहुलता, ये तो बड़े दिलचस्प गुण हैं साहित्य के लिए। चलिए अब उनकी कुछ खास किताबों की बात करते हैं। पहला उपन्यास तो प्रतिरोध पर था, द पाथ टू द स्पाइडर्स नेस्ट्स।
हाँ, 1947 में आया। पृष्ठभूमि नवयथार्थवादी थी, लेकिन कहानी एक बच्चे पिन की नजरों से कही गई थी।
अच्छा, तो यथार्थ के साथ बचपन की वो मासूमियत और कल्पना, वो पुट शुरू से ही मौजूद था।
बिल्कुल, हिंसा और मासूमियत का वो टकराव उसका खास पहलू था।
है ना मजेदार? ये असल में हमारी अच्छाई और बुराई की जो समझ है ना, उस पर एक तरह की टिप्पणी थी। क्या पूरी तरह अच्छा या बुरा होना मुमकिन है, या ये अधूरापन ही इंसान की हकीकत है? कैल्विनो ऐसे सवाल उठाते थे पर जवाब नहीं देते थे, सीधे सीधे
सोचने पर छोड़ देते थे।
और द बैरन इन द ट्रीज, पेड़ों पर रहने वाला बैरन, ये तो मेरी पसंदीदा है। एक लड़का कोसिमो बाप से झगड़कर पेड़ पर चढ़ जाता है और फिर
कभी नीचे नहीं उतरता।
हाँ, पूरी जिंदगी पेड़ों पर गुजार देता है।
ये क्या दिखाता है?
समाज से विद्रोह या कुछ और?
कई चीजें दिखाता है, व्यक्ति की आजादी का सवाल, समाज के नियमों से खुद को अलग करने की इच्छा, पर साथ ही जमीन से जुड़े रहने की जरूरत भी, क्योंकि वो पेड़ों से ही दुनिया को देखता है, उसमें हिस्सा लेता है।
हाँ, ये तो है।
तो ये व्यक्ति और समाज के रिश्ते पर सोचने की आजादी पर एक बहुत ही खूबसूरत मतलब रूपक है।
तिकड़ी की तीसरी किताब थी द नॉन एग्जिस्टेंट नाइट, अस्तित्वहीन योद्धा, 1959, एक खाली कवच जो योद्धा है, ये तो होने के मतलब पर ही सवाल उठा देती है।
बिल्कुल, चेतना क्या है, अस्तित्व क्या है, इन तीनों किताबों ने कैल्विनो को दार्शनिक फैंटेसी के एक बड़े लेखक के तौर पर स्थापित कर दिया। वो इतिहास के माहौल का इस्तेमाल कर रहे थे बड़े दार्शनिक सवाल उठाने के लिए।
फिर 60 के दशक में वो जैसे धरती छोड़कर ब्रह्मांड में पहुंच गए, कॉस्मिकॉमिक्स, ले कॉस्मिकोमीचे, 1965 के साथ। ये किताब तो मतलब कमाल ही है,
है ना? इसमें विज्ञान और मिथक ऐसे घुल मिल गए हैं जैसे जैसे दाल चावल। एक बहुत पुराना लगभग अमर किरदार है QFFQ।
QFQ नाम भी अजीब है, नाता जैसे जैसे वो उसके पड़ोस की बातें हों या घर के किस्से।
वाह, ये तो लाजवाब तरीका है विज्ञान को देखने का।
बिल्कुल, ये वैज्ञानिक फैंटेसी का एक बेहतरीन नमूना है। इसने विज्ञान को एकदम निजी और मानवीय बना दिया।
फिर आई उनकी वो किताबें जिन्हें शायद सबसे ज्यादा जाना जाता है, इनविजिबल सिटीज, अदृश्य शहर, 1972।
हाँ, और इफ ऑन अ विंटर्स नाइट अ ट्रैवलर, अगर किसी सर्द रात में एक मुसाफिर, 1979।
इनविजिबल सिटीज में वो मार्कोपोलो वाले किस्से हैं ना, कुबलाई खान को उन शहरों के बारे में बताता है जो शायद हैं ही नहीं।
ये क्या था मतलब?
हाँ देखिए, वो 55 काल्पनिक शहरों का जिक्र करता है, पर ये शहर सिर्फ ईंट पत्थर की इमारतें नहीं है। हर शहर असल में कह सकते हैं कि यादों, इच्छाओं, सपनों, डर, भाषा, संकेतों, इन सबका एक जाल है।
अच्छा, मतलब हमारे मन के नक्शे।
बिल्कुल, वो शहर हमारे मन के नक्शे हैं। किताब ये दिखाती है कि हम असलियत को सीधे सीधे नहीं समझते, बल्कि इन मानसिक नक्शों, इन कहानियों के जरिए ही समझते हैं।
और किताब की बनावट भी खास है, सुने?
बहुत खास, किसी गणितीय पहेली या क्रिस्टल जैसी है, बहुत सधी हुई, बहुत सोच समझ कर बनाई हुई।
शहर एक बहाना है इंसान के मन और समाज की परतों को खोलने का। और इफ ऑन अ विंटर्स नाइट अ ट्रैवलर, ये तो पाठक को ही कहानी का हिस्सा बना लेती है ना?
हाँ, ये किताब सीधे आप यानी पढ़ने वाले से बात करती है। आप एक किताब पढ़ना शुरू करते हैं पर उसमें छपाई की गड़बड़ी निकलती है, आप उसे बदलने जाते हैं तो दूसरी किताब मिल जाती है जो फिर अधूरी,
अरे,
और इस तरह आप 10 अलग अलग उपन्यासों के पहले अध्याय पढ़ते चले जाते हैं।
ये तो मजेदार है।
ये पढ़ने के अनुभव पर, कहानी के लिए हमारी जो भूख होती है ना उस पर, और खुद कहानी कैसे बनती है इस पूरी प्रक्रिया पर एक बहुत ही मजेदार और गहरा खेल है। इसे मेटाफिक्शन कहते हैं।
मेटाफिक्शन मतलब वो कहानी जो खुद के कहानी होने के बारे में ही बात करे।
सही।
वाह, ये तो दिमाग घुमा देने वाला कॉन्सेप्ट है। और उनका आखिरी उपन्यास मिस्टर पालोमार 1983,
वो फिर कुछ अलग था।
हाँ, वो थोड़ा शांत है, ज्यादा दार्शनिक। मिस्टर पालोमार नाम का एक आदमी है जो दुनिया की हर छोटी बड़ी चीज को देखता है, समंदर की लहर को, चिड़ियाघर के गोरिल्ला को, पनीर की दुकान को,
और
उसे एकदम वैज्ञानिक नजरिए से पूरी सटीकता से समझने की कोशिश करता है। पर हर बार उसे लगता है कि दुनिया उसकी पकड़ से बाहर है, कि तर्क की सीमाएं हैं।
अच्छा,
ज्ञान पाने की हमारी कोशिश और दुनिया का वो अचरज, उसके बीच का तनाव।
बिल्कुल, अवलोकन बनाम कल्पना, ज्ञान बनाम आश्चर्य।
कैल्विनो ने सिर्फ अपनी कहानियां ही नहीं लिखी, उन्होंने इटली की लोक कथाओं को भी जमा किया था। ये बात हुई थी।
हाँ, ये बहुत जरूरी काम था उनका। उन्होंने इटालियन फोक टेल्स, फियाबे इटालियाने का एक बहुत बड़ा और महत्वपूर्ण संग्रह तैयार किया और उसे संपादित किया। पुरानी कहानियों को आज के पाठकों के लिए फिर से जीवंत किया।
ये दिखाता है कि वो जितने नए प्रयोग कर रहे थे,
उतने ही कहानी कहने की पुरानी परंपरा से भी गहरे जुड़े थे।
तो अगर हम केल्विनो के योगदान को समेटना चाहें तो सबसे खास बात क्या होगी, क्या कहेंगे आप?
मेरे ख्याल से सबसे बड़ी बात ये है कि उन्होंने कहानी कहने की जो संभावनाएं हैं उनको बहुत फैला दिया। उन्होंने दिखाया कि साहित्य एक ही वक्त में वैज्ञानिक सोच और मिथक वाली कल्पना दोनों को साथ लेकर चल सकता है।
हाँ, ये कमाल है।
वो आज की चिंताओं और हमेशा रहने वाले इंसानी सवालों को एक साथ गूंथ सकते हैं। वो भाषा के नए नए खेल भी कर सकते हैं और फिर भी आसानी से समझ आ सकते हैं। ये संतुलन साधना बहुत मुश्किल है।
और उन्होंने वैज्ञानिक फंतासी को एक नई पहचान दी। मेटाफिक्शन के तो वो उस्ताद माने ही जाते हैं। और दार्शनिक विचारों को कहने के लिए कल्पना और रूपक का जैसा इस्तेमाल उन्होंने किया, वो अद्भुत है।
बिल्कुल, और ओलिपो से सीखकर उन्होंने दिखाया कि कैसे नियम या बनावट, वो कंस्ट्रेंट्स, रचनात्मकता को असल में बढ़ा सकते हैं। इनविजिबल सिटीज की वो जटिल बनावट या इफ ऑन अ विंटर्स नाइट का वो भूल भुलैया जैसा ढांचा, वो सिर्फ सजावट नहीं है,
वो कहानी के मतलब का हिस्सा है।
सही कहा, वो मतलब पैदा करते हैं।
और उनकी भाषा, आपने पहले हल्कापन का जिक्र किया था जो उनके 6 मेमोज का पहला गुण था, इसका क्या मतलब है? क्या सिर्फ आसान भाषा?
नहीं, सिर्फ आसान नहीं। हल्कापन का मतलब है विचारों की स्पष्टता, भाषा की सटीकता और एक तरह की, क्या कहें, समझदारी भरी मुस्कान जो भारी से भारी बात को भी बोझिल ना बनने दे।
अच्छा,
केल्विनो का मानना था कि हमारी दुनिया इतनी जटिल है, इतनी उलझी हुई है कि उसे सिर्फ भारी भरकम यथार्थवाद से नहीं समझा जा सकता। हमें हल्के कल्पनाशील मॉडल बनाने होंगे, सोचने के नए औजार गढ़ने होंगे। ये हल्कापन वही औजार है।
तो उनके विषय हैं जैसे ज्ञान कैसे मिलता है, दुनिया में व्यवस्था है या नहीं, भाषा क्या कर सकती है और क्या नहीं, ये सब तो आज भी बहुत काम के लगते हैं।
बहुत ज्यादा प्रासंगिक हैं आज। उनकी विरासत सिर्फ साहित्य में नहीं है, आर्किटेक्चर में, शहरों की प्लानिंग में, यहाँ तक कि सॉफ्टवेयर डिजाइन में भी लोग इनविजिबल सिटीज से प्रेरणा लेते हैं।
सच में?
या
सॉफ्टवेयर डिजाइन में भी?
हाँ, और लेखकों पर तो उनका असर बहुत गहरा है। उम्बेरतो इको, सलमान रश्दी, डेविड मिशेल, जेनेट विंटरसन, कितने ही बड़े नाम हैं जो उन पर अपना प्रभाव मानते हैं।
और आज के जमाने में जहाँ इतनी ज्यादा इन्फॉर्मेशन ओवरलोड है, असली और वर्चुअल दुनिया का फर्क मिट रहा है।
बिल्कुल, वहाँ कैल्विनो के सवाल और उनके देखने के तरीके और भी जरूरी हो जाते हैं। अर्थ की तलाश कैसे करें इस शोर में।
उन्हें पुरस्कार भी मिले होंगे जरूर।
हाँ, कई मिले। इटली में बगट्टा प्राइज, फेल्ट्रिनेली प्राइज जैसे बड़े पुरस्कार मिले। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर ऑस्ट्रियन स्टेट प्राइज फॉर यूरोपियन लिटरेचर भी मिला 1976 में।
नोबेल के लिए भी नाम चलता था शायद।
हाँ, नोबेल के लिए भी उनका नाम अक्सर चर्चा में रहता था, लेकिन 1985 में उनका निधन हो गया। पर सच कहूँ तो उनकी पहचान पुरस्कारों से कहीं ज्यादा उनके काम की ताकत की वजह से है।
कुछ और रोचक बातें कैल्विनो के बारे में।
उनका क्यूबा में पैदा होना ही अपने आप में अनोखा है।
हाँ, वो तो है ही। और प्रतिरोध आंदोलन में उनका वो गुप्त नाम सांटियागो, फिर 1956 में हंगरी के सवाल पर कम्युनिस्ट पार्टी छोड़ना, ये भी उनकी हिम्मत और आज़ाद सोच दिखाता है।
और कुछ?
एक और बात ये है कि उनकी किताबों पर फिल्म बनाना या नाटक करना बहुत मुश्किल माना जाता है।
अच्छा, क्यों?
कहानियां तो इतनी दिलचस्प हैं।
हैं, बिल्कुल हैं, पर उनका जादू सिर्फ कहानी में नहीं है। वो कहानी कहने के तरीके में है, भाषा की बारीकियों में है, विचारों की उस बनावट में है। उसे पर्दे पर या मंच पर उतारना आसान नहीं।
तो जो कोशिशें हुई हैं,
जो कामयाब हुई हैं, उन्होंने अक्सर कहानी को हूबहू उतारने के बजाय उससे सिर्फ प्रेरणा ली है, उसे अपने माध्यम के हिसाब से बदला है।
समझ गए। कैल्विनो के लिखने का अंदाज ही ऐसा है कि उनके कई वाक्य एकदम क्या कहते हैं, यादगार बन जाते हैं, सोचने पर मजबूर कर देते हैं। कुछ उदाहरण देना चाहेंगे आप?
जरूर। जैसे अचेतन मन के बारे में उन्होंने लिखा था, अचेतन अकथनीय का सागर है, उन चीजों का जिन्हें भाषा की भूमि से निष्कासित कर दिया गया है।
साइबरनेटिक्स एंड घोस्ट्स से,
मतलब साहित्य वो कह सकता है जो सीधी सपाट तार्किक भाषा नहीं कह सकती।
सर,
बिल्कुल। या इफ ऑन अ विंटर्स नाइट अ ट्रैवलर में पढ़ने के बारे में, मेरे द्वारा पढ़ी गई हर नई किताब उस समग्र और एकात्मक पुस्तक का हिस्सा बन जाती है जो मेरे पठन का योग है।
हम जो पढ़ते हैं वो कैसे हमारे अंदर जुड़ता जाता है, ये तो बहुत सुंदर बात है।
और इनविजिबल सिटी से पंक्ति तो बहुत मशहूर है। शहर हालांकि अपना अतीत बताता नहीं, बल्कि उसे हाथ की रेखाओं की तरह समेटे रहता है। वक्त, यादें और जगहें कैसे एक दूसरे में गुंथी होती हैं। और क्लासिक्स के बारे में उनका कहना था, क्लासिक वह किताब है जिसने वो कहना कभी खत्म नहीं किया जो उसे कहना है। क्लासिक्स क्यों पढ़ें से?
मतलब महान किताबें हमेशा नहीं लगती हैं, हमेशा कुछ नया कहती हैं।
सही। और हल्केपन पर सिक्स मेमोज में मैंने वजन हटाने की कोशिश की है, कभी लोगों से, कभी खगोलीय पिंडों से, कभी शहरों से। सबसे बढ़कर मैंने कहानियों की संरचना और भाषा से वजन हटाने की कोशिश की है। ये उनकी कला का जैसे सार है।
और इनविजिबल सिटीज में नरक पर वो विचार, वो तो आज भी झकझोरता है।
हाँ, वो बहुत गहरा है। जीवितों का नर्क कुछ ऐसा नहीं है जो होगा, अगर कोई है तो वो यही है, वो नर्क जहाँ हम हर दिन रहते हैं, जिसे हम साथ रहकर बनाते हैं। इससे बचने के दो तरीके हैं। दूसरा जोखिम भरा है और निरंतर सतर्कता और आशंका की मांग करता है। नर्क के बीच में कौन और क्या नर्क नहीं है, उन्हें खोजो और पहचानना सीखो, फिर उन्हें सहन करो, उन्हें जगा दो।
मुश्किल हालात में भी उम्मीद और इंसानियत को बनाए रखने का एक रास्ता।
हाँ, एक नैतिक दृष्टिकोण।
कैल्विनो को पढ़ना वाकई एक अलग ही अनुभव है। वो हमें सिर्फ कहानी नहीं देते, बल्कि दुनिया को देखने का, सोचने का एक नया चश्मा देते हैं, है ना?
बिल्कुल।
वो हमें चुनौती देते हैं कि हम अपने आसपास की इस जटिल दुनिया में, इस शोर में अपने रास्ते कैसे खोजें, इस अराजकता में छिपे पैटर्न कैसे पहचाने।
हाँ, और शायद यही सवाल वो हमारे लिए छोड़ जाते हैं, क्या हम कैल्विनो के उस हल्केपन और उस सटीकता से कुछ सीख सकते हैं? क्या हम अपने जीवन, अपने शहर, अपने समाज के उन अदृश्य शहरों को, मतलब उन छुपी हुई सच्चाइयों, इच्छाओं, डरों को देखने की कोशिश कर सकते हैं जिन्हें हम अक्सर नज़रअंदाज कर देते हैं?
ये एक बड़ा सवाल है।
कैल्विनो की कल्पना और उनकी वो संरचनाएं शायद हमें आज की उलझी हुई हकीकत को समझने में कुछ मदद कर सकती हैं। ये एक सोच है जिस पर हम विचार कर सकते हैं।
फिर मिलेंगे अगले अंक में एक नई विश्वविख्यात व्यक्ति, एक नई किताब और एक नए विचार के साथ जो हमारी दुनिया को आकार देता है। यह ऑडियो सारांश आपके लिए एक्ट्रा फाउंडेशन द्वारा प्रस्तुत है।